उन्नति जितनी भी करे हो जाए, लेकिन पतन से सुरक्षा करती है 10 मालाएं, और उसमें 1 मिनट भी स्थिर हो गए तो बहुत बलवान हो जाओगे। ये शरीर मोक्ष का द्वार है, ये साधन ये भोग विलास के लिए या कर्म बंधन बढ़ाने के लिए नहीं। दुनिया के बड़े बड़े विज्ञानी चकित हैं कि ये ओमकार मंत्र की क्या गजब की शक्ति। ये सारे मंत्रों में अनहद नाद माना जाता है, और मंत्र राज और सेतु माना जाता है। भारत के संतों ने ओमकार की महिमा गाई, इस पर फ्रांस के विज्ञानियों ने काम किया, खोज लगाई कि मनुष्य की जीवनी शक्ति के 6,522 होते हैं, अधिक से अधिक 16,000 तक ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के 16,022 पाए गए। लेकिन विज्ञानियों को और खोजते खोजते ये पता चला कि जहाँ आश्रम है, साधना स्थली है, जहाँ शुद्ध वातावरण है, संसारी व्यवहार पति पत्नी का मासिक आदि जो नहीं होता, उस जगह पर 11,022 और पाए गए। लेकिन उससे भी और आश्चर्य हुआ कि जहाँ ओमकार की उपासना कोई करता है तो 70,000 बॉयस बढ़ जाते हैं, जीवनी शक्ति इतनी उम्दा हो जाती। 10 माला जप करने का नियम देता हूं तो 1,000 बार भगवान के नाम का रटन हो गया। उन्नति जितनी भी करे हो जाए, लेकिन पतन से सुरक्षा करती है 10 मालाएं। जो नियम नहीं करते हैं उन्हीं का पतन देखा गया, पाया गया। जो नियम करते हैं वो पतन से बच जाते हैं। वातावरण बड़ा तामसी राजसी पतन वाला है, लेकिन जो नियम के पक्के हैं वे इस कलयुग के दूषित वातावरण से सुरक्षित हो जाते। हे राम जी, संध्या का समय हुआ है, वशिष्ठ महाराज सत्संग छोड़कर प्राणायाम जप और ध्यान संध्या में वही होता है। सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या कोई करता है तो उसे रोजी रोटी के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो उसमें जप का प्राणायाम का महत्व है, और जप में भी शास्त्र गुरु सम्मत जप ध्यान प्राणायाम वो अंतःकरण को शुद्ध भी करता है, एकाग्र भी करता है, निर्दोष भी करता है, सामर्थ्य भी देता है। तो 4 प्रकार का साधन होता है। एक होता है मनमाना साधन, कभी कोई साधन किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, उससे अंतःकरण की मलिनता नहीं जाती, मनमुखता नहीं जाती और मनोराज भी नहीं जाता है। ये मनमुख साधन धार्मिक लोग हैं, लेकिन मनमुख साधन के कारण अंतःकरण के दोष नहीं जाते। दर्शन शास्त्र सुन ले, तीर्थ कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, लेकिन मन में जैसा आता है ऐसे करेगा तो उसमें अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, सिद्धियां नहीं आएगी। सिद्धियां दो प्रकार की होती है, अणिमा गरिमा लघिमा आदि, और दूसरी अंतःकरण की स्वच्छता निर्दुखता। न अष्ट सिद्धि आएगी न अंतःकरण की निर्मलता आएगी, और वो जीवन भर फरियाद करते रहेंगे कि मन एकाग्र नहीं होता, मैं ऐसा धर्मात्मा फिर भी मैं दुखी क्यों, मैं ऐसा फिर भी ये क्यों। कभी कभी ऐसे लोग नास्तिक भी हो जाएंगे जो मनमाना साधन करते, साधन नहीं करते उनकी अपेक्षा मनमाना साधन वाले को भी 10 बार शाबाश है, लेकिन मनमाना है ना, इससे मन पुष्ट होगा, मन मुक्ता पुष्ट होगी और आयुष्य बीत जाएगी। जैसे लोभी की धन की आश आश में आयुष्य पूरी हो जाती, मोही की परिवार में हो जाती, कामी की कामिनियों में हो जाती और एड्स मिल जाती है बोनस में, ऐसे इनको थोड़ी भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी। ऐसे भगत जी को मैं गुरु भी मानता था और उनसे मैं सीख लेने भी जाता था भगवान की प्राप्ति के लिए, इधर उधर घूमता था तो एक मिल गए थे भगत जी, तो उनको जैसा मन में आता था साधन करते थे और गाते थे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हम भी उनके साथ गाते थे। अहमदाबाद में कामनाथ महादेव है रायपुर के बाहर, रायपुर दरवाजे के बाहर, संध्या को हम भी उनके साथ जुड़ते थे। फिर वो जहाँ रहते थे उधर जाके मिले कि हमको ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताओ। तो मनमाना भगत जी था, जुमड़ा वही जुमड़ा मल, फलहार करना चाहिए, अन्न खाने से भजन में अच्छा नहीं रहता, आलू उबाल के, अभी पता चला कि आलू तो कंद में रद्दी में रद्दी है आयुर्वेदिक के अनुसार, रद्दी में रद्दी चीज है कंदों में आलू, सूरन इससे भी थोड़ा ठीक अच्छा है, तो आलू उबाल के खाते थे। और गाल बैठे हुए थे, सपन उसकी बीमारी थी, कुंवारे थे, मैं 22 का था तब वो 30-35 के होंगे। बाद में हम घूम के आए तो एक बार वो भगत जी इधर आया, तो वो जो जहाँ था वहीं का वहीं था, और हम तो गुरु की कृपा से इधर पहुँच गए। वो मनमाना साधन अभी भी वही करता होगा, तो दूसरों से तो भगत जी ठीक है, लेकिन भगत जी संसार से हार के चले जाते। देखो ऐसे भगत जी कभी हम धन्यवाद ही करते हैं, लेकिन एक ये चौथे नंबर का साधन है। तीसरे नंबर का साधन है बहिरंग साधन, तीर्थ यात्रा किया, यज्ञ किया, मंदिर में गए, भगवान कहीं है माने पूजे, ये तीसरे नंबर का साधन है। फिर दूसरे नंबर का साधन होता है कि गुरु मंत्र लिया, मंत्र का अर्थ समझा, प्राणायाम किए, जप किया, ध्यान किया, और फिर थोड़ी शांति मिली, आनंद मिला, कुछ समझे, सत्संग ध्यान भजन माला, ये तो मनमुख साधन से बहिर्मुख साधन शास्त्र और गुरु सम्मत वो अच्छा है तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर से दूसरे नंबर वाला अच्छा है कि दीक्षा विक्षा लेकर अंतरंग साधन, उसमें जप है, ध्यान है, संध्या है, वंदन है, शास्त्र अध्ययन है। फिर आता है ऊसा करते करते अत्यंत एक नंबर का साधन, अत्यंत अंतरंग। अत्यंत अंतरंग साधन में भारतीय संस्कृति के 3 सिद्धांत हैं उसमें। ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा होकर बैठे, महाकाश ही घटाकाश है, घटाकाश ही महाकाश से अभिन्न है, एक सिद्धांत ये, वो अंतरंग विचार का साधन। उसमें अंतःकरण के दोष अथवा जीवत्व का भाव, ईश्वरत्व की दूरता दूरी, ये कैसे है, ये सब समझ गुरु के द्वारा जो मिलती है उसका विचार करके। इन अंतरंग में भी योग बोलता है कि परमात्मा अंतरात्मा है, चित्त की वृत्ति निरोध करो। सांख्य बोलता है कि परमात्मा दृष्टा है, ये तो ठीक है, लेकिन अत्यंत अंतरंग बोलता है कि योग तुमको भी राम राम, सांख्य तुमको भी राम राम। सांख्य कहता है प्रकृति, प्रकृति भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, तो द्वैत हो गया। तो कभी प्रकृति की चल पड़ेगी, कभी परमात्मा की चल पड़ेगी, लड़ लेंगे पति पत्नी, ऐसे ही प्रकृति परमात्मा लड़ लेंगे तो पूर्णता नहीं रही। अथवा योग कहता है कि चित्त की वृत्ति, आत्मा दृष्टा है, यहां तक तो कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है, लेकिन चित्त वृत्ति का निरोध करो। तो वेदांत कहता है भैया तुमको भी राम राम, चित्त की वृत्ति निरोध हो तब भगवान है, और नहीं तो नहीं है क्या। लहरें शांत हो तो पानी है, और लहरें चल रही तो पानी नहीं है क्या। हवा शांत है तो हवा है, चल रही है तो नहीं है क्या। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। लहरें उठती है तो भी और बैठती है तो भी, हवाएं उठती है तो भी और बैठती है तो भी, हम उठते हैं बैठते हैं उसी ठिकाने, क्योंकि तत्व परमात्मा तत्व एक है और नित्य है। उसमें परिणाम परिवर्तन जो भी होता है प्रकृति में होता है, दो नंबर में होता है। परिवर्तन का साक्षी नित्य एक स्वरूप, इसमें गुरु कृपा की बहुत जरूरत होती है, अत्यंत अंतरंग साधन। गुरु कृपा ही केवलम, अंतरंग साधन से तो विट्ठल प्रकट हो गए थे, लेकिन विट्ठल ने भेजा शिवोबा खेचर के पास अत्यंत अंतरंग में पहुंचने के लिए। गदाधर को अंतरंग साधन से मां काली का दर्शन हुआ भावना के बल, लेकिन भेज दिया तोतापुरी गुरु के चरण में अत्यंत अंतरंग। तो अत्यंत अंतरंग का तीन सिद्धांत है, जीव ब्रह्म एकत्व, वासुदेव सर्वमिति, बाहर भीतर एको ज्ञानो, एक गुरु ज्ञान बताए, और कर्तव्य। स्त्री गर्भ धारण करती है गृहस्थी धर्म के अनुसार तो अपना कर्तव्य पाल रही है, शादी किया है और कुल परंपरा में है, बच्चे को जन्म देना है तो ये भी धारण करना, पीड़ा सहना, फिर बच्चा जन्म लेता है उसके मुंह में अपने शरीर का दूध देना, उसकी जठरा में आहुति डालने के बराबर है। फिर वो बच्चा बड़ा हो और हमें सुख दे, ये इच्छा निकाल दे, इस सृष्टिकर्ता के कार्य में हम यज्ञ करें, तो इस प्रकार गृहस्थी जीवन जीता है तभी भी यज्ञ हो जाता है, और आहुतियां देता है तो भी यज्ञ हो जाता है, भोजन करता है तो भी यज्ञ होता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हमारी सार संभाल ली है तो हम उनकी सार संभालें, लेकिन भगवान के रास्ते से अगर रोकते हैं तो उनको हम राम राम कर दिए। मेरी माँ मेरे को रोका के घर पर चलो तो हम उनकी बात ठुकरा दिया, भाई पिता तुल्य है रोका ठुकरा दिया। तो कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लौकिक कर्तव्य माता पिता पत्नी परिवार के प्रति, दूसरा होता है वास्तविक कर्तव्य। वास्तविक कर्तव्य है कि ये जीवात्मा अपने परमात्मा को पाले, परमात्मा के स्वभाव को जान ले, मुख्य कर्तव्य। तो मुख्य कर्तव्य के साथ लौकिक कर्तव्य निभाए तो ठीक है, लेकिन जो मनमुख साधन में चल पड़ते हैं वो मुख्य कर्तव्य से तो गिर जाते हैं, लौकिक कर्तव्य से भी गिर जाते हैं, उनको बोलते खड़िया पलटन। घर तो छोड़ा, साधु तो बन गए, लेकिन न गुरु की आज्ञा में रहना है, न शास्त्र की आज्ञा में रहना है, न अपना ईश्वर प्राप्ति का कर्तव्य में लगना है, न अपना दायित्व भाई गुरु के प्रति जो हमारा दायित्व है, नहीं तो ऐसे लोग भटक जाते। तो ये तीन सिद्धांत को वैदिक परंपरा में स्वीकार किया गया, ये तो मानने ही पड़ेंगे। अपना कर्तव्य वासुदेव सर्वमित्र का उद्देश्य भक्ति मार्ग है तो, और तत्व ज्ञान है तो घटाकाश महाकाश एक जीव ब्रह्म की एकता। लेकिन कर्तव्य छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि से नहीं चलेगा। या पर्यंत जीवेत त्रयोद वंद्य ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च, जब तक जीते हैं ईश्वर गुरु और वेदांत का आदर करें। गुरु की इच्छा नहीं है और अपन चल देते हैं अपने रास्ते, तो आप कर्तव्य च्युत हो गए, साक्षात्कार नहीं हो सकता। अगर गुरु की इच्छा के विरुद्ध हम डीसा में रहते या अहमदाबाद में रहते या इधर उधर रहते तो हमको नहीं हो सकता था, लेकिन गुरु जी ने आज्ञा दे के भेजा तो साक्षात्कार के बिना और क्या है, साक्षात ही साक्षात है। हम अपनी इच्छा से आ जाते तो हम गिर जाते, और गुरु जी ने भेजा तो हमारा गिरना नहीं। हालांकि अहमदाबाद का ही हमारा निवास शरीर रहा करा इधर वर्षों तक, अब गुरु जी ने फिर भेजा। गुरु भेजते तो अलग बात है, लेकिन हम चले आते तो हम साधना के कर्तव्य से गिर जाते। गुरु ने आज्ञा दी तो हमने सत्संग किया, लेकिन हम करने लग जाते तो हम गिर जाते कर्तव्य से, फिर वासुदेव सर्वमिति में टिकते नहीं, हम ब्रह्मास्मि में विश्रांति में टिक नहीं पाते। चुप बैठना ही ठीक है, लेकिन तत्व ज्ञान होना बहुत ऊंची बात है। तो मन हावी हो जाता है। जो मनमानी साधना करते हैं उनको मन हावी हो जाता है। अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, न लौकिक पिट्ठों में गिने जाते हैं, न शास्त्र और संत के अनुसार साधना में गिने जाते हैं। कुछ लंग तो बोले वेदांत का या ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी कौन है, बोले मेधावी। मेधावी किसको बोलते बताएं, बुद्धि के कई नाम है, मनीषा धीषण धी प्रज्ञा शेमूषी मति और बुद्धि। बुद्धि मति शेमूषी प्रज्ञा धी धीषणा मनीषा। मनीषा बुद्धि का नाम है, मनीषा मनीषा शेमूषी प्रज्ञा। लेकिन ये आखिरी अंतरंग साधन इतनी बुद्धि वाले भी फैल है वहां। भाई बुद्धिमान है, मनीषा है, मनीषी है, धीषणा है, धी है, प्रज्ञा है, शेमूषी मति है, मति है, ये सब बुद्धि के नाम है। लेकिन इसमें मेधावी साक्षात्कार कर सकता है। मेधावी छिन्न संशया, जीव ब्रह्म की एकता में वासुदेव सर्वमिति में मेधावी ही पार होता है, बाकी सब अंतरंग साधन में घूमते रहते। अंतरंग के फल को अत्यंत अंतरंग मेधावी। धृति बराबर बुद्धि, समझ जुड़ी रहे, अनुचित को काटने की जिसको ताकत होती है उसको मेधावी बोलते हैं। जो अनुचित है उसको छोड़ने की जिसकी ताकत होती है, उचित अनुचित तुम्हारी बता देगी, धृति बता देगी, मेधा और धृति बराबर, मेधा और धृति से धृति बुद्धि, बुद्धि ऐसी हो जो छोड़ने की चीज को छोड़ सके और जुड़ने की जगह पर भाव को जोड़ने में सफल हो जाए। तो मेधा, मेधावी छिन्न संशया, मेधावी पुरुष के सारे संशय विच्छिन्न हो जाते, छिन्न संशय जीवत्व को छोड़ देता है, ईश्वर और जगत के द्वैत को छोड़ देता है। बोले कहां तो परमात्मा है और कहां ये साधारण जीव, ये साधारण जीव परमात्मा कैसे? तो भाई परमात्मा सर्वव्यापक है कि नहीं? बोले है। सदा है कि नहीं? है। सब में है कि नहीं? है। तो अपने को देह ना मानकर और अपने जीवत्व को ईश्वर में विलय करके जो बोलता मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है और सब वासुदेव है, तो सब वासुदेव तो मैं भी वासुदेव हो गया। उसमें मैं पर जोर नहीं, वासुदेव पर जोर हो, ऐसी मेधा बननी चाहिए। जैसे नामदेव की बन गई थी, भयंकर प्रेत दिखा और नामदेव कहते भले पधारो लंबक नाथ, धरती पे चरण आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबक नाथ, सुर संकादि ब्रह्मादि गुण गाए तुम्हारे दिन रात, नाम देव को करो सनाथ, भले पधारो लंबक नाथ। ऐसे मेधावी रहे वासुदेव सर्वमिति नाम देव एक नाथ। हम ही बोल तो वेद बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं वेद वाणी, शास्त्र की वाणी अभंग है, और बोलते हम ही बोल तो वेद बोलते। तो काराम महाराज मेधावी छिन्न संशय, अर्जुन भी मेधावी हो गए, धनंजय मेधावी। तो चार साधन हुए और पांचवा हुआ संसार में भटको, नाक के द्वारा सुख लेने को जाओ, जीभ के द्वारा चटोरेपन का सुख लो, वाहवाही के लिए मजूरी करो, मैं बड़ा, धन में बड़ा, सत्ता में बड़ा, फलाने में बड़ा, सौंदर्य में बड़ा, मैं को, लेकिन थक के चला जाएगा निराश होके बेचारा। पांचवें नंबर का, चौथे नंबर का थोड़ा एहसास होगा कि चलो भगवान की थोड़ी भक्ति तो की, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार नहीं की, तो वो भी अर्ध थका अर्ध मरा ही जाएगा संसार से। तीसरे नंबर का बहिरंग साधन करेगा, पूर्णता तो नहीं मिलेगी लेकिन उन दोनों से तो अच्छा है। दूसरे नंबर का उन तीनों से तगड़ा है, और पहले नंबर का तो महाराज पहले नंबर में पहुंच जाएगा, द्वैत से अद्वैत में, अनेकत्व में से एकत्व में। बंधन कहाँ है? बंधन आसक्ति में है, बंधन वासना में है, बंधन अज्ञान में है। अज्ञान किस में रहता है? जिसमें अज्ञान रहता है वो क्या है, और अज्ञान रहता है उसको जानता कौन है? तो फिर पता चलेगा कि अज्ञान मुझ में तो है नहीं, अज्ञान है मति में, अज्ञान है मन में, और मन मन से संबंध विच्छेद कर ले तत्व ज्ञान में, अथवा भावना से वासुदेव सर्वमति कर दे। लेकिन जो कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य और व्यवहारिक कर्तव्य पालता है, शास्त्र के अनुसार साधन करता है, वो बाजी मार लेता है। शास्त्र विपरीत साधन किया तो हार जाएगा, थक जाएगा, अपने भाग्य को ठुकरा देगा। इसलिए गीताकार ने कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वे उपसर्ग जो ठीक तरह से इस जगत को सच्चा मानकर मूर्ख हो गए हैं, वो मुझ चैतन्य सुख स्वरूप को नहीं जानते। तो राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, एहे मुनि शार्दुल, ये स्थूल शरीर है, इंद्रियां है और संबित है, इन तीनों के मेल से व्यवहार होता है, तो इसमें उत्तम कौन है? संवित संवित कहो, स्फूर्णा कहो, कलना कहो, वृत्ति कहो, है कहीं? तो स्थूल शरीर तो ये दिखता है, इंद्रियां है, इंद्रियों के गोलक दिखते हैं, लेकिन इंद्रियां अंतरंग है, सूक्ष्म शरीर के साथ इंद्रियां निकल जाती, पता भी नहीं चलता। नस नाड़ियों को इंद्रिया नहीं कहते, इसमें सूक्ष्म तन्मात्राएं होती, नस नाड़ियों के द्वारा जो खबर पहुंचाती। नस नाड़ियां भी वैसे तो आंख कान ये स्थूल है, उससे सूक्ष्म नाड़ी है, और नाड़ियों से भी सूक्ष्म तन्मात्राएं, वो तन्मात्राएं चली जाती तो इन आंखों से नहीं दिखता। नेत्र तन्मात्रा कट हो जाए तो देख नहीं सकता, और सूक्ष्म शरीर निकल गया तो पांचों तन्मात्रा पर, पांच ज्ञान इंद्री, पांच कर्म इंद्री, पंच प्राण, 15 हो गए मन और बुद्धि, ये 17 का सूक्ष्म शरीर होता है। पांच भूतों का ये शरीर, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर विशेष माना जाए, इंद्रियों का महत्व, लेकिन इंद्रियों से भी महत्व है संवित का। जिधर को संवित सत्ता देगी और संवित में निश्चय होगा, उसी प्रकार का इंद्रियों में भाव आएगा, वृत्ति। तो राम जी ने प्रश्न पूछा, वशिष्ठ ने क्या उत्तर दिया होगा वो अभी मैंने सुना नहीं, लेकिन मेरी अपनी भावना सुना दी, पढ़ो।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देह इंद्रियों में सार क्या है सो सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी हैं। जब देह मिट जाता है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार प्राण हैं, प्राणों का सार मन है, और मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है, चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं, चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं, जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं। हे राम जी, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित हो।
अभी तो बहुत ऊंची, बहुत अंतरंग बात आ गई। वशिष्ठ जी की कितनी सूक्ष्मतम पहुंच है, सीधा परमात्मा तक पहुंचा दी बात। सारे शरीर का सारे संसार का सार शरीर है। आपका शरीर है तो आपकी जमीन, जागीर, रुपया, पैसा, रिश्ता, नाता, और शरीर में भी श्रेष्ठ है इंद्रियां। इंद्रियां नहीं हो, आंख कान नाक देखने सुनना चखना, तो शरीर क्या करेगा? तो संसार का सार शरीर, शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रियों का सार मन, मन का सार प्राण, प्राण का सार क्या है?
प्राणों का सार मन है, और मन का सार बुद्धि है,
मन का सार बुद्धि, और बुद्धि का सार अहम, अहम का सार
जीव,
जीवात्मा है। जीवात्मा का सार चिदावली वासना संयुक्त सुंदरती, और चिदावली जहां से उत्पन्न होती है संवित, उसको कुंडली शक्ति भी कहते हैं। उसमें स्थित रहो। आप लोभ में स्थित होते हैं तो उसी प्रकार के विचार होते, काम में स्थित होते तो उसी प्रकार के विचार होते, चिंता में स्थित होते तो उसी प्रकार का, लेकिन आप उस चिदावली के सार में स्थित हो जाओ और उसमें एक मिनट भी स्थित हुए तो बहुत बलवान हो जाओ। वो परम बल है। इसमें अत्यंत सात्विकता और शास्त्र संत सम्मत साधन उसमें चिदावली से पार में पहुंचा देता है। वास्तव में वही है, उसका अस्तित्व है तब चिदावली। चिदावली के अस्तित्व से जीव है, जीव के अस्तित्व से मैं है, मैं के अस्तित्व से मति है, मति के अस्तित्व से मन है, मन के अस्तित्व से इंद्रियां, मन के अस्तित्व से प्राण है, प्राण के अस्तित्व से इंद्रियां, इंद्रियों के अस्तित्व से शरीर है, और शरीर है तो संसार है। संसार का सार शरीर, शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रियों का सार प्राण, प्राण का सार मन, मन का सार बुद्धि, बुद्धि का सार जीव, जीव का सार चिदावली, चिदावली का सार शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में स्थित हो जाओ, जो वास्तविक में हो। लेकिन ये शास्त्र सद्गुरु सम्मत साधन हुआ और बहुत सूक्ष्म हुआ, मेधावी बनना पड़ेगा। जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हैं, और जिसको स्वीकार करना है स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा धृति होनी चाहिए। धृति और बुद्धि मिलकर मेधावी, मेधावी। बोलते हैं मेधावी पुरुष है। अर्जुन मेधावी थे तो युद्ध के मैदान में जो छोड़ना था छोड़ लिया, शरीर संसार की सत्यता छोड़ी, इंद्रियां छोड़ी, मन छोड़ा, बुद्धि छोड़ा, अहंता छोड़ा, चिदावल मिटक गए, नष्ट मोह सुमति लब्धवा। बहुत ऊंची बात है, साकार भगवान के दर्शन से भी ऊंची, और यात्रा दूर की है। तो एकदम पांचवें क्लास का है जगत का आपाधापी, इससे चौथे क्लास का है मन माना भगवान का भजन धर्म आकर्म, तीसरे नंबर का है बहिरंग साधन, दूसरे का है अंतरंग, और पहले नंबर का है चिदावली का सार। उसमें आ जाए, उसमें आ गए तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह ऊपर वाले में होता है, इसमें टिक गए एक बार अच्छी तरह से, फिर मोह नहीं आएगा, उल्टा ज्ञान नहीं टिकेगा। फिर उठत बैठत वही उठाने, कत कबीरम उसी ठिकाने। मंसूर को फांसी दी गई, सूली पे चढ़ा दिया गया, अनलाभ। सुकरात को जहर दिया जा रहा है, बोले ये मरता है, मुझे मौत नहीं मार सकती। अष्टावक्र महाराज टेढ़ी टांग है, ये वो है, श्राप मिला है। बोले मुझे श्राप कुछ नहीं कर सकता, शरीर पर है श्राप, मुझे मेरा क्या बिगड़ेगा। जब लोभ में स्थित होते हैं तो लोभ उठा के ले जाता है पैसों की तरफ, मोह में स्थित होते तो मोह भागा के परिवार में ले जाता है। ऐसी जिस जिसमें जीव स्थिति देता है, महत्व देता है, उधर भागता है। कोई विरला अत्यंत अंतरंग साधन में परमात्मा को महत्व देकर उसमें स्थिति कर दे, और बाकी की किसी भी चीज में स्थिति हुई तो वहां से तो जाना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय जो भी मिलेगा छूटेगा, और उसको पाने का प्रयत्न करो, संभालने का प्रयत्न करो, फिर भी छूटेगा छूटेगा छूटेगा। तो बोले ईश्वर को भी पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा ना। हाँ, उधर पाने का प्रयत्न करने की आदत है, इसलिए ईश्वर को पाने का प्रयत्न करो। वहां को पाने का प्रयत्न की आदत पूरी हो गई तो ईश्वर तो अपना स्वभाव है, फिर ज्यादा मेहनत नहीं है। ईश्वर को पाने का महत्व आ जाए तो फिर वो उसका आकर्षण छूटा तो ईश्वर तो स्वतः है। उनको पाओ, संभालो, और वो उनको पाओ तो उसमें प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए और इच्छा चाहिए। इसमें प्रारब्ध की ऐसी तैसी, परिस्थितियों की ऐसी तैसी, खाली थोड़ा पुरुषार्थ, शास्त्र सम्मत और इच्छा पाना है बस। और पाओ तो संभालना पड़ेगा और चीज को, और संभालते संभालते भी छोड़ जानी पड़ेगी। ईश्वर को पालो तो उसको संभालना भी नहीं है और छूटता भी नहीं है। और चीज मिलेगी तो सीमित मिलेगी। पूरा अहमदाबाद कोई खरीद नहीं सकता, खाली अहमदाबाद, गुजरात नहीं, अहमदाबाद पूरा कोई किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आज सृष्टि के आगे देखें तो गुजरात भी क्या होता है, सृष्टि के मानचित्र में देखें तो गुजरात जरा सा भारत, अब भारत में भी जरा सा गुजरात, अब गुजरात में भी अहमदाबाद का मानचित्र में देखो तो, लेकिन अहमदाबाद में भी चलो साबरमती रामनगर, पूरे अहमदाबाद में साबरमती रामनगर की इतना जरा सा हुआ, उसका भी कोई एक व्यक्ति मालिक बने तो मुसीबत हो जाए। इनकम टैक्स और चौपड़ा और लाइट के बिल भर भर के गिन गिन के थक जावे, पागल हो जाए और संभाल नहीं सकेगा। कईयों को रखेगा संभालने को, फिर भी कुछ ना कुछ तो, लेकिन ईश्वर मिलता तो पूरा अनंत ब्रह्मांड में फैला हो और उसे संभालना नहीं पड़ता, छूटता नहीं। ईश्वर को पाने की इच्छा से अगर आप लगे हैं और समझो ईश्वर को पूरा सम्मिलित में नहीं पहुंचे, आराम से आगे मन, तो फिर भी ईश्वर को पाने की इच्छा है और मर गए तभी भी ऊंचे लोकों में जाएंगे, और संसार को पाने की इच्छा इच्छा से मरे तो भटकते रहे, भटकाव बना रहे। बोले फलाना आदमी फलाने से दगा करके भाग गया, फलाने से दगा नहीं किया उसने, अपने से दगा किया। फलाना नौकर सेठ के इतने पैसे देके भाग गया, सेठ के तो पैसे गए लेकिन उसके तो चरित्र गया, कर्म गया, और उसके पास टिकेगा उतना जो उसके पास प्रारब्ध है, और फिर भी प्रारब्ध का भी टिकेगा, सदा नहीं छोड़ के जाएगा। फलाने जगह पे फलाना व्यक्ति ऐसा पैसा चुरा के चला गया था, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो जिसका गया उसको इतना घाटा नहीं जितना ले जाने वाले को घाटा। कर्म का सिद्धांत है, तड़प तड़प के छुड़वाएगा। इसीलिए बोलते रूखी भली सूखी भली, सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। ज्यादा व्यक्तिगत खर्चा उड़ाऊपना ये व्यक्ति को गिरा देगा। व्यक्तिगत खर्चा कम, सत्कर्म, दान पुण्य सेवा, ये तन साधन है, साधन कर मोक्ष करी द्वारा, ये शरीर मोक्ष का द्वार है, ये साधन, ये भोग विलास के लिए या कर्म बंधन बढ़ाने के लिए नहीं।